मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है।
वचन कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हम उपस्थित हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मधुर गीत से परमेश्वर की स्तुति करते हुए आइए कार्यक्रम का आरंभ करें। श्रोता, हमारे देश की जन्मभूमि ने समय समय पर अनेकों विद्वान पैदा किए हैं, जिनके कठिन परिश्रम और अनुसंधान कार्यों से भारत को अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे वैज्ञानिक की चर्चा कर रही हूँ जो पहले भारतीय खगोलज्ञ थे, जिनका नाम एक पुच्छल तारे से जुड़ा है, जिनके नाम से एक खगोलीय सिद्धांत जाना गया और जिनके नाम से एक वेधशाला और भारत का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप प्रचलित है। वे अपने जीवन भर टेलीस्कोप, खगोलीय वेधशालाएं और संस्थानों की स्थापना करने के लिए परिश्रम करते रहे, ताकि उनके देशवासी खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में उच्च शिक्षा पा सकें। उनका नाम था मनाली कल्लर वेणु बप्पू। सन 1927 में एक सुसंस्कृत दक्षिण भारतीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे बचपन से ही प्रतिभावान और उद्यमशील थे। वे न केवल पढ़ाई में तेज थे बल्कि अपने विद्यालय और महाविद्यालय की वाद विवाद, खेलकूद और सभी प्रकार के पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेते थे। उनको साहित्य, कला और उर्दू शायरी का भी शौक था। हैदराबाद में आरंभिक शिक्षा पूरी कर वेणु बापू सन 1949 में हार्वर्ड यानी विदेश चले गए, जहां वे ऐसे खगोल वैज्ञानिकों के संपर्क में आए जिनका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। वहां कुछ महीनों के अंदर उन्होंने एक पुच्छल तारे या धूम केतु की खोज की, जिसे कॉमेट बप्पू बॉक न्यूकर्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस कार्य में उन्हें वॉट जे बॉक और गॉर्डन न्यूकर्क का सहयोग मिला था। उन्हें धूमकेतु की खोज करने वाले प्रथम भारतीय खगोल विज्ञानी होने का श्रेय मिला। इसके बाद उन्होंने कॉलिन सी विल्सन के साथ तारों की दीप्ति यानी प्रकाश और वर्णक्रमीय विशेषताओं का अध्ययन किया। खगोल विज्ञान में लाल रंग के तारों को शीतल यानी ठंडा और बैंगनी या जामुनी रंग के तारों को बहुत गर्म माना जाता है और तारों का रंग उनके तापमान को दर्शाता है। गर्म होने के अलावा बैंगनी रंग वाले तारों में हीलियम का अंश अधिक होता है। सूर्य एक ठंडा तारा माना जाता है। जब किसी तारे का वर्णक्रमीय विश्लेषण किया जाता है तब भारी तत्वों की संरचना रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ती है। इन रेखाओं की चौड़ाई एवं तारों की निरपेक्ष दीप्ति तथा निरपेक्ष कांति में विशिष्ट संबंध होता है। इस संबंध में वेणु बप्पू के अनुसंधान को बप्पू विल्सन सिद्धांत कहा गया है। खगोल विज्ञान को उनकी यह सबसे बड़ी देन है। यूएस में उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई थी कि उन्हें वहां नौकरी मिल रही थी, किंतु उनकी इच्छा थी कि उनके देशवासी खगोल विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए विदेश जाने को मजबूर ना हों। इसलिए वे भारत में ही वेधशालाएं और टेलीस्कोप स्थापित कर अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते थे। सन 1953 में बप्पू वापस स्वदेश लौट आए। वह अपने प्रयासों में लगे रहे और बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के वेधशाला में नौकरी मिल गई। फिर उन्होंने खगोलीय तथ्यों जैसे कि सूर्य ग्रहण के अध्ययन के लिए खगोलीय अभियानों के साथ सुदूर स्थानों की यात्रा की। कोडाई कनाल में निदेशक के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के समय शक्तिशाली टेलीस्कोप स्थापित कर वेधशाला के आधुनिकीकरण का काम किया। बेंगलोर में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की स्थापना उन्हीं के प्रयास का परिणाम है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आधुनिक पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और वर्कशॉप सुविधाएं सभी संस्थानों में उपलब्ध हों, ताकि आकाश के अध्ययन के लिए आवश्यक टेलीस्कोप और दूसरे उपकरणों से संबंधित समस्याओं के हल के लिए खगोल वैज्ञानिकों को किसी पर आश्रित न होना पड़े। प्रकाशीय दूरवीक्षण यंत्रों के डिजाइन तैयार करने और उसके लेंसों व दर्पणों को घिसकर तैयार करने की कला में उन्होंने कुशलता प्राप्त की थी। उन्होंने देश के विभिन्न संस्थानों के लिए 100 सेंटीमीटर व्यास का दूरवीक्षण यंत्र बनाने की तकनीकी जानकारी और सहायता प्रदान की। वेणु बप्पू की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा तब पूरी हुई जब लगभग 90 इंच व्यास वाले शक्तिशाली टेलीस्कोप या दूरबीन लगाने की उनकी योजना को न केवल अनुमति मिल गई बल्कि दूरबीन का निर्माण भी भारत में किया गया। उनकी स्मृति में इस सबसे बड़े दूरबीन का नाम वेणु बप्पू दूरबीन रखा गया है। किंतु सन 1982 में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वे अपना सपना पूरा होता हुआ नहीं देख सके। सन 1986 में इस शक्तिशाली दूरबीन को एक खगोलीय पिंड पुच्छल तारा हेली को देखने के लिए उनकी स्मृति में औपचारिक रूप से चालू किया गया। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर वेणु बप्पू भारत के महान खगोल वैज्ञानिक थे।
मुझे खुदाया अपनी रूह से भर दिया, तूने मुझे खुदाया अपनी रूह से भर दिया। मैं गाऊंगा तेरी सना, मैं गाऊंगा तेरी सना, मुझे खुदाया अपनी रूह से भर दिया, तूने मुझे खुदाया अपनी रूह से भर सबसे ऊंचा और ऊंचा हमेशा रहे, यीशु नाम सबसे ऊंचा और ऊंचा हमेशा रहे, जो जपते तेरे नाम को, जो जपते तेरे
Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna. प्रिय मित्र, क्या आप आश्चर्यकर्म पर विश्वास करते हैं? बहुत से लोगों का यह विश्वास है कि आज के समय में आश्चर्यकर्म नहीं होते, क्योंकि उन्होंने शैतान के झूठ पर विश्वास कर लिया है और अपने मनों में यह धारणा बना रखी है कि अलौकिक अनुभव के दिन और युग बीत चुके हैं। उनकी इस धारणा के अनुसार यदि हम विचार करें तो कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं, जैसे कि क्या परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सामर्थी नहीं है? क्या वह आश्चर्यकर्म नहीं कर सकता? क्या वह बदल गया है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रभु की स्तुति हो कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्व उपस्थित है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में आश्चर्यकर्म करना चाहता है। आश्चर्यकर्म या चमत्कार वह अद्भुत कार्य है जो मानवीय बुद्धि, समझ और कल्पना के परे है। यह प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत होने वाले सामान्य कार्यों की तरह नहीं होता। यह उन सब से बाहर या परे है। यह कैसे होता है, इसके बारे में शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। यदि बयान कर दिया जाए तो वह आश्चर्यकर्म आश्चर्यकर्म नहीं रह जाएगा। बाइबल में प्रभु यीशु द्वारा किए गए बहुत से आश्चर्यकर्मों का वर्णन है। प्रभु यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया, भूखों को खिलाया, ज़रूरतमंदों के लिए प्रबंध किया, मुर्दों को जिलाया, वह पानी पर चला। हाँ, वह सचमुच आश्चर्यकर्म करने वाला प्रभु है। योवेल नबी की पुस्तक में बाइबल इस प्रकार कहती है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में कि उसके लोग भी यह आश्चर्यकर्म कर सकते हैं, जहाँ ऐसा लिखा है, और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियाँ नबुवत करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, मैं आकाश में और पृथ्वी पर अद्भुत कार्य करूँगा, अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएँ के खंभे दिखाऊँगा। ये आश्चर्यकर्म हमारे लिए भी उपलब्ध हैं। यदि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने और काम करने दें तो ये सब हमारे जीवन में भी होंगे। परमेश्वर कहता है, गरीबों को खाना खिलाओ, विधवाओं और अनाथों की सुधि लो और ज़रूरतमंदों की सहायता करो। इन सब में हमें सफलता तब मिलेगी और हमारी सेवकाई में आश्चर्यकर्म होंगे जब पवित्र आत्मा हमारे साथ कार्य करेगा। जैसा मूसा ने निर्गमन अध्याय 33 पद 16 में परमेश्वर से प्रार्थना की, यदि तू हमारे साथ ना जाए तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि तब यह कैसे ज्ञात हो सकेगा कि ना केवल मैंने तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है परंतु तेरी प्रजा ने भी। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे कि मैं और तेरी प्रजा उन सब लोगों से अलग ठहरें जो पृथ्वी पर हैं। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद जब चेले प्रचार करने लगे तो उनकी सेवकाई में अद्भुत कार्य होते थे। इसका वर्णन हमें मरकुस अध्याय 16 पद 20 में मिलता है, जहाँ लिखा है, और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे दृढ़ करता रहा। यदि हमें चमत्कार की परिभाषा देने को कहा जाए तो हम किस प्रकार देंगे? मैं समझता हूँ शायद वह इस प्रकार होगी, चमत्कार इस भौतिक जगत में परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा होने वाले अद्भुत कार्यों का विशेष प्रकटीकरण या रहस्योद्घाटन है। आश्चर्यकर्म के बारे में बाइबल पहला कुरंथियों अध्याय 2 पद 9 में इस प्रकार कहती है, जिन बातों को आँख ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए गए उन आश्चर्यकर्मों को इसी पृथ्वी पर अपने से प्रेम करने वालों के जीवन में होने के लिए तैयार किया है। इस वचन को पढ़कर हमारे मनों में बहुत सारी बातें आती हैं, जिनके बारे में मनन कर हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को समझ सकते हैं, जिनमें सबसे पहली बात है, आँख ने नहीं देखा। जिन आश्चर्यकर्मों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वाले विश्वासी के जीवन में करने के लिए की है, उसे देखने के लिए आत्मिक आँखों की आवश्यकता है। पहला कुरंथियों अध्याय 2:10-11 में बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य के विचारों को जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार को कोई नहीं जानता। परमेश्वर की भेद और रहस्य की बातों को कोई मनुष्य तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि परमेश्वर स्वयं उसे उस पर प्रकट ना करे। जब हमारे पास आत्मिक आँखें और दृष्टिकोण होंगे तो हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की गुप्त और गहरी भेद की बातों को देख सकेंगे जो साधारण आँखों से नहीं देखी जा सकती। जब हमें आत्मिक आँखें प्राप्त होती हैं तो हम उन बातों को देखने लगते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया के विश्वासियों को लिखा, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हों जिससे तुम जान सको कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है। इफिसियों की पत्री अध्याय 1:16-19। दूसरा कुरंथियों अध्याय 4:4 में पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को ना देख सकें। दुनिया का हर व्यक्ति पापी है और अपने पापमय जीवन में लिप्त है। इस पापी दशा में उसकी आत्मिक आँखें अंधी हैं। वह प्रभु यीशु और उसके तेजोमय रूप को अर्थात उसके परमेश्वरत्व को नहीं पहचानता। जब पवित्र आत्मा उसके हृदय में काम करता है तो वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा को देखने लगता है। पवित्र आत्मा उस पर प्रकट करता है कि यीशु ही प्रभु है। पौलुस प्रेरित दूसरा कुरंथियों अध्याय 3:16-18 में कहता है, परंतु जब कभी कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो वह पर्दा हटा लिया जाता है। अब यह प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पापमय जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करता है तो परमेश्वर उसे आत्मिक आँखें प्रदान करता है। फिर वह जैसे जैसे आत्मिकता के मार्ग में बढ़ता है उसकी मन की आँखें ज्योतिर्मय होती चली जाती हैं, जिनमें वह अपनी बुलाहट की आशा और पवित्र लोगों में अपने उत्तराधिकार की महिमा के धन को जानने लगता है। जैसे जैसे वह परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में आगे बढ़ता है वह परमेश्वर के अलौकिक प्रकाशनों को जानने और समझने लगता है। वह परमेश्वर से प्रेम करने लगता है। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना उसे अच्छा लगने लगता है। इस तरह वह परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता है। परमेश्वर के एक दास ने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना रेल की दो पटरियों के समान है जिनके सहारे चलकर रेलगाड़ी की तरह हम पवित्रता का जीवन और स्वर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में जीवन और बाइबल अध्ययन जैसी महत्वपूर्ण और आवश्यक बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए भजन संहिता अध्याय 119:18 में हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है जहाँ लिखा है, मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूँ। यह एक बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है जिसे हमारे लिए करना बहुत ही आवश्यक है। क्या आप ऐसी प्रार्थना करेंगे ताकि आप परमेश्वर की स्वर्गीय आँखों को और आत्मिक आँखों को और आत्मिक दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को देख सकें और परमेश्वर आपके जीवन को जयवंत से भी बढ़कर बना दे।
श्रोता, प्रस्तुत संदेश आपको कैसा लगा यह हमें अवश्य बताएं। आत्मिक जीवन की सहायता के लिए हमें पत्र जरूर लिखें। हमारा पता है महिमा के वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार फिर मिला लें। महिमा के वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। हमसे सीधा संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 09835983759। नंबर फिर से मिला लें, 09835983759। इस नंबर पर आप सीधे हमसे बातें कर सकते हैं या SMS के द्वारा अपना निवेदन भेज सकते हैं। अब हमें कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। हमारी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए सोनाली का नमस्कार।